सुबह आहान की आँख खुलते ही उसे रात को जो भी हुआ था वो याद आ गया था। पहले तो आहान ने चाहत के साथ अच्छे से बर्ताव किया, लेकिन जब उसे पता चला चाहत की मॉम की तबीयत खराब है और वो पैसे के लिए उसके साथ सो गई, तो आहान की केयर उसके गुस्से में बदल गई। आहान ने चाहत को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया था। बाहर तनु ने भी चाहत को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चाहत वहां से चली गई। जाते हुए चाहत ने तनु को बता दिया था कि आहान ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। अंदर जाकर तनु ने आहान को काफी भला बुरा कहा और साथ ही उसकी गलती का भी एहसास करवाया। तनु ने बताया कि चाहत की मॉम की हालत सच में बहुत क्रिटिकल है, तो आहान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत चाहत के पीछे चला गया। वहीं चाहत आहान के घर से अपने घर पहुंच चुकी थी। लकीली उस वक्त रवि अंकल और उसका परिवार बाहर की तरफ नहीं था, तो चाहत ने स्कूटी अंदर की तरफ पार्क की और छुपते छुपाते दबे पांव अपने घर में चली गई। चाहत बाथरूम में गई और शावर ऑन करके बाथरूम में बैठ गई। चाहत रोते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मुझसे नहीं सहन हो रहा। मैंने खुद को संभालने की हमेशा कोशिश की, अपनी तकलीफ को बातों में भुलाना चाहा, लेकिन आज नहीं सहन हो पा रहा। मैं आपको चाहकर भी बचा नहीं पाऊंगी, आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई मम्मा। आप कब से तकलीफ में थे और मुझे पता भी नहीं चला। मैं एक बहुत बुरी बेटी हूँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। चाहत काफ़ी देर तक वहीं बाथरूम में बैठी रो रही थी। उसने शावर बंद कर दिया था, फिर भी चाहत वहाँ पर बैठी थी। वो ठंड से ठिठुर रही थी, उसका ना तो किसी से बात करने का मन कर रहा था और ना ही किसी का चेहरा देखने का। श्रद्धा ने इस बीच काफ़ी बार उसे हॉस्पिटल बुलाने के लिए कॉल किया, लेकिन चाहत ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी माँ का सामना कैसे करेगी। इन सब के बीच आहान चाहत के घर पर पहुँचा। वो अंदर आया तब उसकी मुलाकात मिस्टर रवि से हुई। मिस्टर रवि को बिजनेस मैगजीन्स पढ़ना पसंद था, इसीलिए वो आहान को अच्छे से जानते थे। आहान को देखते ही रवि उसके पास गए और हैरानी से कहा, मिस्टर आहान ओबेरॉय, आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब, आपको मुझ जैसे छोटे आदमी से क्या काम हो सकता है? आहान को अपने घर पर देखकर हैरानी के साथ साथ रवि को खुशी भी हो रही थी। आहान इस वक्त किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने इरिटेट होकर कहा, मुझे डॉल मुझे चाहत शर्मा से मिलना है। लेकिन चाहत तो कल रात से घर नहीं आई है, मिस्टर रवि ने जवाब दिया। फिर उनकी नज़र वहां खड़ी स्कूटी पर गई तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं अंदर था शायद, इस वजह से मैंने उसे देखा नहीं, वो ऊपर अपने घर पर होगी। आपको चाहत से क्या काम है? मैं हर बात आपको बताना जरूरी नहीं समझता। सीढ़ियां कहाँ है? मुझे चाहत के पास जाना है, आहान ने रूडली कहा। रवि ने उनकी बात पर हामी भरी और उन्हें सीढ़ियों के पास लेकर गया। वो भी आहान के साथ ऊपर आना चाह रहे थे, लेकिन आहान ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, वो मेरे लिए जॉब करती हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरी कंपनी से जुड़ी बात मैं किसी और के सामने करूं। आहान अच्छे से जानता था कि उसे रवि को कैसे हैंडल करना है। उसका जवाब सुनने के बाद रवि वैसे भी उसके पीछे नहीं आ सकता था। रवि ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और वापस नीचे जाने लगा। नीचे जाते हुए रवि ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, चाहत को आहान ओबेरॉय की कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन ये कब हुआ? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ये मेरे आइडियल हैं, पहले बता देती तो इनकी खातिरदारी की खास तैयारी करके रखता। अभी कविता को कहकर उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करवाता हूँ। आहान के वहाँ होने पर रवि को कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। वो अपनी पत्नी कविता के साथ मिलकर उसकी खातिरदारी में लग गया। वहीं आहान ऊपर पहुंचा तो उसे चाहत कहीं पर दिखाई नहीं दी। चाहत अभी भी अंदर बाथरूम में घुटनों में अपना सिर रखकर बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। चाहत की आंखें बंद थी, मानो वो कुछ पल सुकून के अपने साथ अकेले बिताना चाहती हो। आहान बाथरूम के पास गया और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, डॉल क्या तुम अंदर हो? आहान की आवाज़ तेज थी, उसे सुनकर चाहत का ध्यान टूटा। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। चाहत अपना रोना कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए उसने अपने मुंह पर कसके हाथ रख लिया। रोना कंट्रोल करने की वजह से चाहत के मुंह से सिसकी निकल गई। उससे आहान समझ गया कि चाहत अंदर ही है। उसने गुस्से में दरवाजे पर पंच किया और फिर से कहा, गुस्सा मत दिलाओ डॉल, अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहा है। तनु ने तुम्हें सब बता दिया होगा, तो ये बात भी अच्छे से जान लो, मुझे हर छोटी चीज पर गुस्सा आता है, खासकर तब सब कोई मुझे इग्नोर करे। चुपचाप बाहर निकालो, वरना मैं ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। आहान की धमकी का चाहत पर असर हुआ। वो धीमे कदमों से चलकर दरवाजे के पास आई और बाथरूम का दरवाजा खोला। आहान ने देखा चाहत भीगी हुई थी और उसकी नाक लाल थी, इससे साफ था कि उसे हल्का जुकाम हो चुका था। चाहत की आंखें नम थी और उसका चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि वो घंटों रोई होगी। आहान ने तुरंत अपना ब्लेजर उतारा और चाहत को पहनाने लगा। चाहत ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सच में वो आहान की कोई डॉल हो जिसमें जान नहीं बची है। चाहत की वैसी हालत देखकर आहान को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी उस हालात का जिम्मेदार वही था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चाहत का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, डॉल मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आहान, चाहत ने धीमी आवाज में कहा। चाहत की नाराजगी जायज थी। आहान ने उसे समझाते हुए कहा,
लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें किसी और के पास नहीं जाना है, तुम मेरे पास ही आओगी, और तुम आई भी थी, लेकिन मैं उस हालत में नहीं था कि तुम्हें समझ पाऊं। तुम नहीं जानती अंदर ही अंदर खुद से लड़ना कितना मुश्किल होता है। गुस्से में होता हूं तो मैं नहीं ध्यान दे पाता कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तुमने देख लिया होगा कि मैं गुस्से में एक हैवान बन जाता हूं, जिसे सिर्फ तुम ही इंसान बना सकती हो। प्लीज मुझसे इस तरह रूड मत हो, वरना मैं अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दूंगा। बोलते हुए वो इमोशनल हो गया। आहन काफी साल से अपनी बीमारी से जूझ रहा था, और ये सच भी था कि अब वो खुद भी लड़ते लड़ते थक गया था। चाहत ने महसूस किया कि उसके सामने जो आहान खड़ा था वो वही आहान था जिससे वो पहले भी कई बार मिल चुकी थी। कल रात वो उस आहान से मिली थी जो गुस्से में पागल हो जाता था। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, किस पर नहीं। थोड़ी देर पहले ही आहान ने उसे क्या कुछ नहीं कहा और उसे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया, और अब वही उसके पास खड़े होकर उसकी माँ को बचाने की बात कह रहा है। चाहत की मजबूरी थी, उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने सुबकते हुए कहा, आई प्रॉमिस आहान, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी, उफ तक नहीं करूंगी, पर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। बोलते हुए चाहत रोने लगी थी। आहान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और सख्त आवाज में कहा, आगे से मुझसे तो क्या, किसी को भी ये मत कहना कि आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो डॉल, अगर ऐसे ही रही तो सब तुम्हारा फायदा उठाएंगे, जैसे कल रात मैंने। बोलते हुए आहान रुक गया, फिर उसने चाहत की तरफ देखा जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं लग रही थी।
आहान ने सख्त आवाज में कहा, तुम घर पर बैठकर आराम करोगी और खुद का पूरा ख्याल रखोगी। रही बात तुम्हारी मॉम की तो मैं उनका देख लूंगा, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जाने की बात सुनकर चाहत झट से बोली, आहान मुझे भी मम्मा से मिलना है। मैंने कहा ना डॉल, तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ और तुम्हारे मकान मालिक को तुम्हारी केयर करने के लिए कहकर जा रहा हूँ। कपड़े बदल लेना वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, आहान ने सख्त आवाज में कहा। उसने चाहत के फोरहेड पर हल्का सा किस किया और वहां से चला गया। आहान ने चाहत को जो जख्म दिए थे वो उसके प्यार से बात करने पर काफी हद तक ठीक भी हो गए थे। चाहत ऐसी ही थी, अगर कोई उससे थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लेता तो वो उसकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देती थी, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहीं आहान चाहत के घर से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आया तो उसे मिस्टर रवि और उसकी वाइफ कविता दिखाई दी, जो हाथ में कॉफी और कुकीज लिए ट्रे के साथ खड़े थे। आहान ने उनसे कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप ये सब चाहत के पास भिजवा दीजिए, मैं शाम को आता हूँ, प्लीज तब तक आप उसका ध्यान रखिएगा। रवि हैरानी से आहान को देख रहा था कि वो चाहत की इतनी केयर क्यों कर रहा है, पर आहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिस्टर रवि से बात करने के बाद वो नीचे जाने लगा, तभी उसके पास एक मैसेज आया। मैसेज देखने के बाद आहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी फिलहाल के वक्त वो अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता था। गाड़ी की तरफ जाते हुए आहान अपनी उंगलियों से बैक काउंटिंग करते हुए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।